नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि संकट के समय रचनात्मक भूमिका निभाना विपक्ष का कर्तव्य है।
ये प्रोटेस्ट है, ये तो इन लोगों का पॉलिटिक्स करना है, देश के हित में कोई सोचना नहीं है। दुनिया में सभी जगह तनाव है, इस बीच में भारत में एकदम शांति भी है। देश को सपोर्ट करने बजाय इस समय ये तो इसमें भी सिली पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष पर बयान दिया था। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। ये विधेयक वित्त वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने का प्रावधान करता है। सदन ने सरकार के प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी। सदन में आज वित्त विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये वित्त विधेयक मध्यम वर्ग पर केंद्रित है और सरकार ने 17 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी है।
We have exempted the basic customs duty.
हमने 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट दी है। क्या इससे छोटे परिवारों, आम नागरिकों को लाभ नहीं होगा, जिनके परिवार के बुजुर्ग या सदस्य अस्पताल में भर्ती हैं और जिन्हें ये महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं?
In hospital and who have to buy these expensive medicines.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में कोविड के बाद लगभग 1024 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। लोकसभा में आज श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने विश्वसनीय यात्रियों को निर्बाध टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी रोकने के उपाय किए हैं।
जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को कन्फर्म टिकट मिलने लगा है।
सरकार ने कहा है कि देश में 36 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इस बीच भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनियों ने कहा कि एलपीजी, कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर उन खबरों का खंडन किया है जिनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शनों के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा संशोधित करके 45 दिन करने का दावा किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया और मौजूदा रिफिल बुकिंग की समय सीमा अपरिवर्तित है। पश्चिम एशिया संघर्ष के 26वें दिन भी पूरे क्षेत्र में हमलों का सिलसिला जारी है। राजनयिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अभियान तेज कर दिए हैं। इस बीच अमरीका ने संघर्ष समाप्त करने और परमाणु कार्यक्रम खत्म करने के उद्देश्य से ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है। मीडिया खबरों के अनुसार ये प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया था। इसमें शत्रुता को रोकने, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने और उसके क्षेत्रीय भूमिका को नया रूप देने के लिए व्यापक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ में आज शीर्ष माओवादी नेता पापाराव समेत 18 माओवादियों ने समर्पण कर दिया। समर्पण करने वालों में 7 महिलाएं शामिल हैं। पापाराव पर 25 लाख रुपये का इनाम था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा निहत्ते लोगों की हत्या की स्मृति में आज नरसंहार दिवस मना रहा है। कोड नेम ऑपरेशन सर्चलाइट के अंतर्गत 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी बलों ने निहत्ते लोगों की हत्या कर दी थी। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल आज से छत्तीसगढ़ में शुरू हो गए। उद्घाटन समारोह आज शाम रायपुर में होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया इन खेलों का शुभारंभ करेंगे। 3 अप्रैल तक चलने वाले इन खेलों में 30,000 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।